हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। वैसे भागवत के दो अर्थ हैं, भागवत ग्रंथराज और भागवत पुरुष। तो आज भाग्य से भागवत ग्रंथ राज के छठे अध्याय के पहले, छठे स्कंद के पहले श्लोक अध्याय में 42वें श्लोक में यमदूत हमारे सारे कर्मों के साक्षी कौन है उसका वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। मनुदास जी और दूसरा भागवत पुरुष जो पंच तत्वों में भक्ति की शक्ति का स्वरूप है, भक्ति भक्ति का स्वरूप है, वो स्वरूप श्लोक से नहीं समझना चाहिए। नारद मुनि का अवतार जो भक्ति के आचार्य हैं श्रीवास पंडित जी का महिमा गाएंगे। तो आज भाग्य से दो भागवतों का हमारे को श्रवण वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए पहले नैम से भागवत का पहला, छठे स्कंद का पहला अध्याय, छठा स्कंद, विशेष रूप से पोषण, भगवान कैसे अपने भक्तों का पोषण करते हैं। जब भक्त हार जाता है तो भगवान उनका रक्षण करते हैं, पोषण करते हैं। उस पोषण में मुख्य रूप से पांचवें अध्याय में जब नरकों का वर्णन सुना परीक्षित महाराज ने और लोगों को बहुत नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, तो दयालु वैष्णव हृदय परीक्षित महाराज ने कहा नरक से बचा कैसे जाए, लोगों को नरकों से कैसे बचाया जाए। तो सुखदेव महाराज ने कहा पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि वेदों में प्रायश्चित लिखा है। बोला प्रायश्चित करके फिर पाप करे तो ये तो वो आपका जो तर्क है वो ठीक नहीं है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि पाप करके फिर प्रायश्चित करके फिर पाप कर लेता है। तो सुखदेव महाराज ने कहा फिर अगर ज्ञान हो जाए तपस्या करे तो फिर अज्ञान मिट जाएगा तो पाप करेगा नहीं। बोला इसमें सबको तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, सब तो गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो फिर सबका हित कैसे होगा। तब सुखदेव महाराज समझ गए कि परीक्षित वैष्णव है जो सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण करे और नरक से बचाए, वो साधन इनको बताना चाहिए। तब एक इतिहास बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं पुराणों में इतिहास है, पुराण में इतिहास और शिक्षा दोनों है। तो इतिहास बता रहे हैं कन्याकुब्ज नगर का। कन्याकुब्ज नगर प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी कानपुर, आपने सुना है बास में जो जहाँ का इत्र बहुत मशहूर है, हाँ कनौज, तो ये पूरा क्षेत्र कन्याकुब्ज कहलाता है, कानपुर भी उसमें आता है, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का कहना है। तो यहाँ एक ब्राह्मण वो बात कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने ये कथा बताई है भगवान की पूजा करते हुए, उसकी तरफ हाथ उठा के कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि कन्याकुब्ज के ब्राह्मण जो ब्राह्मण के सारे कर्म जानता था, पूजा पाठ जानता था, यज्ञ जानता था, सारी विधि जानता था, फिर भी पाप करने की प्रवृत्ति जो अंदर में अंकुरित रूप में है, जब कोई ऐसा सामने दृश्य आ जाता है तो वो फिर जाग जाती है। इसका मतलब ज्ञान से पाप मूल से नाश नहीं होता है, वो बीज रूप में रह जाता है। तो उस अजामिल की कथा हम सुनते आ रहे हैं। वैसे अज कहते हैं माया को, और मेल का मतलब मिल जाए, जो माया से मिल जाए वो संसार में फंस जाता है, अजामिल अज, अज, अज वैसे माया को कहते हैं अज। सो अजामिल की कथा तो आप सब सुनी हुई है, ब्राह्मण होते हुए भी अपनी पत्नी का त्याग करके केवल एक दुष्ट पुरुष को वैश्या से आलिंगन करते हुए देखा तो उसके हृदय में भोग करने की भावना जाग उठी, काम वासनाएं भड़क उठी। तो इसका मतलब के केवल पूजा पाठ से हृदय शुद्ध नहीं होता, हो जाता तो बड़ा प्रयास किया अजामिल ने, लेकिन रोक नहीं पाया अपने आप को। वैश्या से विवाह कर लिया, पत्नी को छोड़ दिया और 80 साल में भी पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसका मतलब भोग में कितना लिप्त था। लेकिन भाग्य से घर में नारायण शिला की पूजा करता था, सालिंग्राम शिला की। भगवान की पूजा करने वाले को भगवान छोड़ते नहीं है, ये भी सिद्धांत स्थापित होता है कि कोई भी थोड़ी स्वल्पमस्य धर्मस्य, कोई भी थोड़ी भगवान की पूजा आराधना करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो कुछ संतों की कृपा से उसके पुत्र का नाम नारायण, ये भी कहते हैं कि जब वैद्य कोई कड़वी दवाई देना चाहते हैं तो मधु में मिला कर देते हैं, क्योंकि कड़वी पीना मुश्किल होता है। तो साधु संत भी ऐसे पथ भ्रष्ट मूर्खों को भगवान का नाम भी पुत्र मोह में मिला के दे दिया। भाई बेटे का मोह है वो तो हो गई मधु, और नाम है नारायण का तो ये मीठी दवाई दे दी। वैसे भी हम सब भौतिक रोगी हैं, हमारे लिए दवाई भगवान का नाम है, नाम को औषधि कही गई है। तो वो नारायण नारायण उच्चारण करता था लेकिन भगवान समझकर नहीं। इसको कहते हैं नाम आभास, नाम का आभास मतलब छाया मात्र, नाम नाम के महत्व को नहीं जानते थे। फिर भी अंत समय 3 जमदूत आए और 3 जमदूत ने उसके गले में जम फांस डाल दिया और सूक्ष्म शरीर को निकाल ही रहे थे, तो उसने अचानक नारायण के नाम का उच्चारण किया, अपने बेटा से बेटे को बुलाया। लेकिन उस वक्त 4 विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। फिर विष्णुदूत ने उनसे पूछा, आप इसको क्यों ले जा रहे हैं, क्या इसके पाप हैं? तो विष्णुदूत बता रहे हैं कि इसने क्या क्या पाप किए हैं और पाप करते हैं उसका पता कैसे लगता है। तो इस प्रसंग में विष्णुदूतों के द्वारा ये प्रवचन चल रहा है, और ये जमदूत कह रहे हैं और विष्णुदूतों को समझा रहे हैं कि ये पापी है। लेकिन विष्णु दूत कहेंगे आखिर में, आपको ये मालूम नहीं है कि एक बार नारायण का नाम लेने से जो वैकुंठ नाथ है, जन्म जन्मांतर के पाप राशि जल के भस्म हो जाती है, तो आप इसको कैसे ले जा सकते हो, छोड़ो इसको, और छुड़ा दिया। तो नाम से कैसे भगवान पोषण करते हैं, 3 अध्यायों में अजामिल के जो कथा से ये स्थापित किया गया है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं जिसमें हमारे कर्मों के साक्षी कौन है। हम समझते हैं हम कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यमदूत कह रहे हैं कि ये सब साक्षी हैं। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। सूर्यो अग्नि खमम मरुदेव सोम संध्या निदिच खम कुहु स्वयं धर्म इति हय एते देहि यस्य साक्षिणः। देहस्य मतलब देहधारी का, देहस्य देहधारी का, जिसने देह का धोखो धारण किया है, और देह धारण करने का सामान्य कारण है कर्म। कर्मों के कारण ही हमको देह धारण करनी पड़ती है। कर्म कर्म किसको कहते हैं, जो हमको एक देह उसके फल को भोगने के लिए धारण करने के लिए बाध्य कर दे, इसको कहते हैं कर्म। किम कर्म उच्यते, ये 8वें अध्याय भगवद गीता में अर्जुन पूछता है कर्म किसको कहते हैं, और भगवान उत्तर क्या देते हैं, कर्म किसको कहते हैं, आठवें अध्याय का 2वें श्लोक में ये भगवान का उत्तर है। कर्म उच्यते, क्या शब्द है कर्म उच्यते, संज्ञा देह धारण करने के लिए बाध्य कर दे उसको कर्म कहते हैं। देह धारण करने के लिए बाध्य कर दे। दूसरा अध्याय आठवें अध्याय का एक मिनट जरा निकालो फटा क्या है। देह भूत भाव उद्भव कर, भूत भाव उद्भव कर, कर्म उच्यते कर्म संज्ञते। देह भाव भूत, भूत भाव उद्भव करो, भूत भाव, भूत मतलब पांच भूतों का शरीर, भाव का मतलब उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे उसको कर्म कहते हैं। भूत भाव उद्भव कर कर्म उच्यते, कर्म उच्यते कर्म संज्ञते, विसर्ग कर्म संज्ञित, विसर्ग कर्म संज्ञित। विसर्ग का मतलब विशेष सर्ग, विशेष सर्ग का मतलब शरीर धारण करना। हाँ, एक सर्ग होता है जो भगवान की सृष्टि होती है, उसमें रूप नहीं होता है कोई, उसमें तत्व होते हैं। और एक सृष्टि हुई जब ब्रह्मा बनाते हैं उसमें रूप होते हैं 84 लाख के, तो विसर्ग का मतलब 84 लाख जूनियर, और विसर्ग का मतलब 84 लाख जूनियर, और संज्ञित का मतलब इसको संज्ञा कही जाती है। तो कर्म देह धारण करने का कारण है, और उसका साक्षी कौन है भाई, कौन सा देह किसको मिलेगा, कौन साक्षी है? तो कहते हैं सूर्यो, सूर्य, सूर्य क्या है, भगवान की आंख है, शशि सूर्यो नेत्र। और ब्रह्म संहिता में भी सूर्य को क्या कहा गया है, सकल ग्रहणाम क्या है, चक्षु, सकल ग्रहणाम, चक्षु का मतलब आंख। ये जो आज नया नया नमूना आया है ना, CCTV लगी है सब जगह, जाओ वो कहते हैं हमारे आप CCTV के विजिलेंस में हो, CCTV आपको देख रही है क्या कर रहे हो, लिफ्ट में भी लगी हुई है, माल में भी लगी हुई है, मंदिर में भी लगी हुई है। ये अभी आइडिया मिला, भगवान ने पहले एक सुबह में सूर्य की CCTV लगाई है और रात को चंद्रमा की, और सबका उसमें फोटो निकल जाता है। आजकल कहते हैं रोड के ऊपर कैमराएं लगी हुई हैं, आप स्पीड में जाते हैं आपका फोटो आता है, गाड़ी का फोटो आता है। ये देखो आज की टेक्नोलॉजी में पड़ा है, ये आया कहां से, भगवान ने ये सब पहले से व्यवस्था कर रखी है। तो सूर्य भगवान की आंख है जो सबको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वो साक्षी है हमारा। और सूर्य सच बोलता है, भगवान का शिष्य है, भगवत गीता का पहला, वो अच्छी तरह से जानता है कि कौन क्या कर रहा है। सूर्य अग्नि ही, अब अग्नि के बगैर तो हम जी नहीं सकते हैं, एक अग्नि तो बाहर है जो भोजन बनाने के काम आती है, इसका मतलब खाते हैं तो अग्नि जलती है, और दूसरी अग्नि पेट के अंदर पड़ी है जो जो जठरा अग्नि, बाकी और अग्नियों को छोड़ो ये दो अग्नियां तो रोज है ही ना सामने, और फिर तीसरी रोशनी के लिए जलाते हैं, तो ये सब हमारी साक्षी है। असल का इसका अर्थ क्या है, दूसरा, ये सब व्यक्ति हैं, सूर्य एक व्यक्ति है। आठवें अध्याय भगवत गीता में जहां दो मार्ग कहा गया है, देवयान और पितृयान, एक देव मार्ग से जाते हैं एक पितृ मार्ग से जाते हैं, जो देव मार्ग से जाते हैं वापस नहीं आते हैं, पितृ मार्ग से जाते हैं वापस आते हैं, वहां ये सब नाम लिखे हैं, अहनी है, अंधेरी रात है, दिन है, ऐसे सब लिखा है ना, तो वहां लिखा है इनके अधिपति देवता। तो सूर्य का देवता तो सबको नाम मालूम है, सूर्य देवता का नाम मालूम है सबको, सूर्य नारायण को विवस्वान कहते हैं, और ये आदित्य का पुत्र है, 12 आदित्यों में एक आदित्य है। तो कोई कहे कि सूर्य है, लोक का अधिपति है सूर्य नारायण, ऐसे अग्निदेव है जो आहुति लेता है, तो अग्निदेव है वो साक्षात आके अर्जुन और कृष्ण के साथ खांडव वन को जब दहन करने का समय था, तो अग्नि ने कहा कि मुझे अजीर्ण हो गया है घी पी के, आप मेरी एक कुछ, अब अग्नि ने खांडव प्रस्थ के लिए, तो अग्नि व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ, और अग्नि व्यक्ति के रूप में माता सीता को ले गए, और उसकी जगह छाया सीता छोड़ा, और फिर अग्नि ने सीता माता को वापस राम जी को दिया। तो अग्नि देव है, और उसकी पत्नी का नाम है स्वाहा, स्वाहा, तो ये पत्नी व्यक्ति की बात है, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति है। खमा आकाश, अब आकाश से कोई बच सकता है, आकाश जहां जाओगे सब जगह है कि नहीं है, आकाश तत्व के रूप में हमारे अंदर में भी सारी खाली जगह में तो आकाश ही भरा हुआ है, तो आकाश ये आकाश तत्व भी है और अधिपति इन सब के देवता है मरुद। मरुद का मतलब हवा, हवा की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी को मारुति बोलते हैं और उसका अर्थ है इतनी कमजोर है कि जो उसमें चढ़े उसकी मां रोती है उसकी मां रोती है। तो मरुद देवता है कि नहीं है, वायु देव है कि नहीं है, उसका पुत्र हनुमान है कि नहीं, तो वायु भी देवता हुआ ना, तो ये सब देवता है ना अपनी जगह पे, ये सब साक्षी देवता हैं सारे। और इसके बाद देव कह दिया कि ये सारे देवता हैं, ये सारे देवता हैं। और प्रभुपाद ने कहा एक जगह देव का अर्थ भगवान भी मान लेना चाहिए। बोला क्यों? बोला सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है कि नहीं है, और सब जो कुछ कर रहे हैं उसको जानता है कि नहीं जानता है। तो देव ये सारे देवता हैं जो साक्षी हैं। और फिर लिखा है सोम, सोम कहते चंद्रमा को, और चंद्रमा रात को और दिन को सूर्य, और सोम, सोम को तो सोम का वंश चलता है, सोम की पत्नी रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी सोम, सोम की, उसके सूर्य वंश में पुत्र अत्रि, अत्रि के घर में तीन भगवान का अवतार हुआ। ये सोम वंश चलता है सूर्य चंद्रमा से, चंद्रमा तो व्यक्ति है ना, सोम चंद्रमा चंद्र वंश पूरा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो चंद्रमा देव है ना, तो ये भी व्यक्ति है, उसका पुत्र है अत्रि, अत्रि अत्रि सोम, सोम का पुत्र है, अत्रि का पुत्र सोम है, कश्यप अत्रि सोम, हाँ कश्यप अत्रि सोम, हाँ सोम अत्रि का पुत्र कैसे है, अत्रि के तीन पुत्र हुए अत्रि और अनुसुया के, एक भगवान विष्णु वो दत्तात्रेय के रूप में आए, एक शंकर जी दुर्वासा के रूप में आए, और ब्रह्मा जी सोम के रूप में आए, तो सोम अत्रि का पुत्र अत्रि, कश्यप अत्रि सोम। तो यहां सोम देव हुआ, उसके पिता का नाम है और उसके बेटों का नाम भी है आगे चल के, हाँ वो सोम के कौन पुत्र, सोम का पुत्र हुआ बुद्ध, और ऐसे पीछे पीछे ये वंश पूरा चलेगा। नवे अध्याय में सोम के वंश का वर्णन है 12 अध्यायों में, तो सोम देवता है ना, इसका मतलब हम बात एक कहना चाहते हैं कि इसको देवता समझना चाहिए, सारे देव हैं। संध्या, तीन संध्या है, त्रिकाल संध्या रोज पढ़ते हैं, सुबह की संध्या सूर्य उगने से पहले और तारे डूब जाए उसको प्रातः संध्या कहते हैं, मध्यान्ह संध्या 12 बजे की, और सायं संध्या सूर्य अस्त हो जाए तारे नहीं निकले, ये तीन संध्याएं। संध्या काल अहनी दिन, अहनी कहते हैं अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, ये अहनी अहनी का मतलब दिन, और दिन का भी देवता है अपना, रात का भी देवता है अपना। दिशा, कितनी दिशाएं जानते हैं? 10 दिशाएं। सामान्य लोगों को 4 दिशाओं का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 4 कोने और ऊपर और नीचे, 10 दिशाएं, और इन दिशाओं के भी दिग्पाल हैं, हर दिशा का एक दिग्पाल है, दिग्पाल मतलब दिशा का रक्षक है, तो ये दिशाओं के भी देवता हुए, ये सारे देवता। खम, खम किसको कहते हैं? खम जल, हाँ जल लिखा है, कम कम कम, खम आकाश ऊपर हो गया, कम कम जल, ये नया नाम है, पहले हमको दूसरे 4-5 नाम है, कम जल, हाँ जल, जल का देवता का नाम क्या है? वरुण देव है, जल का देवता हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऐसे जब नहीं समझेंगे तो हमको इसका समझ में ही नहीं आएगा कि ये साक्षी कैसे होंगे, भाई पानी कैसे साक्षी होगा, भाई तो वरुण देव है जो उसका अधिपति है और उसके बहुत अनुचर हैं, जो जल में हम जाते हैं स्नान करने तब भी वो उनके अनुचर देखते रहते हैं, और जल का कथा कहनी हो तो आपको आसानी से कथा कहने की जरूरत पड़े तो कौन सी कथा कहोगे। नंद बाबा सुबह सवेरे स्नान करने चल गए, जल के अनुचर लेके गए, भगवान श्री कृष्ण गए तो वरुण देव ने उनका सेवा किया, है ना कथा, तो जल के साक्षी हैं कि नहीं है। और भगवान ने गोपियों को कहा कि जल में आप नगन स्नान कर रही हैं, इसके देवता देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप इसको नहीं समझती हैं क्या। तो ये सिद्धांत सारे एकदम जो एक शब्द देखते ही ये सिद्धांत समझ में आने चाहिए। और फिर कुहू पृथ्वी को कहते हैं, भाई पृथ्वी भूमि देवी का तो सबको मालूम है कि नहीं है। ये भूमि देवी गाय का रूप धारण करके जाती है प्रार्थना करने के लिए, और भगवान की पत्नी है भूदेवी, श्रीदेवी और भूदेवी, तो ये भी साक्षी है, ये तो भगवान की पत्नी है भूदेवी पृथ्वी, तो ये सारे। और फिर कहते हैं स्वयं धर्म और धर्मराज स्वयं। धर्मराज स्वयं कैसे, उसके दो गुप्तचर हमारे कंधे के ऊपर बैठे हैं, क्या नाम है उनका, सबके कंधे के ऊपर यमराज के दो गुप्तचर बैठे हुए, क्या नाम है उसका, चित्रगुप्त, क्या नाम है, चित्रगुप्त। और चित्रगुप्त का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या होगा, चित्र का मतलब फोटो, गुप्त का मतलब सीक्रेट, सीक्रेट फोटोग्राफर, चित्रगुप्त का मतलब सीक्रेट फोटोग्राफर, इसका मतलब उनके हाथ में कैमरा है, आपको पता नहीं लगता है, वो आपकी सारी जन्म से लेकर मरण तक की रील बनाते हैं, और मरने से पहले उसको एक्शन रीप्ले करके दिखाते हैं कि तुमने क्या क्या किया है। इसलिए अंत समय लोग भयभीत होके हाय हाय करके मरते डरते हैं कि इनको सब पता है, ये सारा हमारा रिकॉर्ड इनके पास पड़ा है। तो ये यमराज कैसे देखता है स्वयं अपने, चित्रगुप्त जो उसके गुप्तचर हैं जो सबके कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं, यही कैमरा लेके बैठे हुए हैं, कहीं दूर नहीं है, और भगवान तो बिल्कुल हमारी सांस लेने वाली नस से नजदीक बैठे हुए हैं। तो ये सब इति ये सारे देहधारी के साक्षी हैं। ओ दो चित्रगुप्त, तो एक चित्र लेने वाला एक गुप्त रह के दो कंधे दो है, इसलिए भाई होंगे दो, मुझे मालूम नहीं, चित्रगुप्त उसको कहते हैं, दो मेरे को कैसे याद आ गया पता नहीं। अब इसका अर्थ, इस श्लोक का अर्थ सबको समझ में आया, हाँ। अब श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। सूर्य अग्नि आकाश वायु देवगण चंद्रमा संध्या दिन रात दिशाएं जल स्थल तथा स्वयं परमात्मा, यहां स्वयं धर्म है, तो स्वयं परमात्मा लिखा है लेकिन स्वयं धर्म है धर्मराज, ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ धार्मिक संप्रदायों के सदस्य विशेष रूप से ईसाई कर्म के फलों की में विश्वास नहीं करते। ये प्रभुपाद जी कहीं गए थे तो किसी ईसाई ने कहा कि हम कर्म के फल को नहीं मानते हैं क्योंकि कौन उसका साक्षी है, हमने क्या किया इसका कौन साक्षी, जैसे कोर्ट में जाते हैं तो पहले कोई साक्षी चाहिए, तो हमने किया इसका साक्षी कौन है, तो हमको दूसरा जन्म क्यों मिलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार हमने ऐसे विद्वान ईसाई प्रोफेसर से विचार विमर्श किया तो उसने ये तर्क दिया कि यद्यपि लोगों को उनके दुष्कर्मों के लिए तब दंड दिया जाता है जब साक्ष्यों से सबूत मिलता जाते हैं, किंतु यह साक्षी किसी को विगत कर्मों के फलों के लिए कष्ट पाने के लिए जिम्मेदार कहाँ है। ऐसे व्यक्ति के लिए यहां पर यमदूतों ने उत्तर दिया है, जो ऐसे कहते हैं हमारे कर्मों का साक्षी कौन है, उसके लिए यहां यमदूत उत्तर देते हैं। अब यमदूतों के उत्तर को क्यों इतना महत्वपूर्ण माने, ये प्रश्न उठता है यमदूतों के उत्तर को, क्योंकि नरक में जाने वालों को नरक दूत जानते हैं, वो नरक में जाते हैं उनको दंड मिलता है। जैसे यमदूत बनाया किसको जाता है, एक महात्मा कह रहा था जो 100 बार नरक में जाए और सब नरकों की अच्छी जानकारी हो उसको यमदूत जैसे कोई जेल में जाए तब 10-20-50 बार उसको लंबी सजा हो तो उसको कहते तुम अब इन बाकी जो बंदी हैं इनका मैंने इनके जमादार बन जाओ। तो ये यमदूत जो है यमराज के सारे नरकों के अंदर क्या यातना, कौन पाप करके कौन से नरक में जाता है, इसमें उनका अनुभव है, एक एक का अनुभव अच्छी तरह से है। तो ये वो साक्षी हैं जिन्होंने आंखों से देखा हुआ है कि कौन से पाप करने वाला कौन सा दंड भोग रहा है। तो ये साक्षी क्या, साक्षात तो वो व्यक्ति कह रहे हैं जो देख रहे हैं और जो सबको ले जाते हैं, तो उनकी बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात आंखों से देखे हुआ नरकों का हाल जानते हैं। तो ये यमदूत ऐसे व्यक्ति के लिए यहां पर यमदूत ने उत्तर दिया है, बद्ध जीव ये सोचता है कि वो चोरी चुपके कार्य कर रहा है और उसके पाप कर्मों को कोई नहीं देख रहा, किंतु शास्त्रों से हमें ये समझ लेना चाहिए कि साक्षी अनेक हैं तथा सूर्य अग्नि आकाश, यथा सूर्य अग्नि आकाश वायु चंद्रमा देवता संध्या दिन रात दिशाएं जल स्थल तथा स्वयं परमात्मा जो प्रत्येक हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हैं। साक्षियों की कमी नहीं है, साक्षी तथा परमेश्वर दोनों विद्यमान हैं, इसलिए अनेक जीवों को या तो उच्च लोकों में लिया जाता है ले जाया जाता है या नरक जैसे निम्न लोकों में नीचे गिरा दिया जाता है। इसका मतलब इन साक्षियों के समाचार के अनुसार देव नेत्रेणा, ये भागवत में है, तो फिर भगवान के अधिपति देवता अलग अलग जोनियों में सबको डालते हैं, कोई स्वर्ग में और कोई नरक में और कोई नीचे। तो ये कौन डालता है, कैसे डालते हैं, डालते हैं साक्षियों के साक्षी देने के ऊपर। कौन डालता है, भगवान के नियुक्त देव यमराज जो है वो भगवान की तरफ से नियुक्त किया गया इस काम के लिए, वो जा डालता है। तो यहां ये श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं साक्षी तथा परमेश्वर ये सब है, तो इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं हो पाती, क्योंकि हर वस्तु की व्यवस्था परमेश्वर के प्रबंध द्वारा ही की जाती है। स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये विष्णु पुराण से श्लोक है कि भगवान भले अपने धाम में बैठे हैं लेकिन उनकी सारी शक्तियों के द्वारा वो सारा संचालन चलाते हैं, और जिसमें तीन शक्तियों का यहाँ नाम लिखा है, ज्ञान सब कुछ जानते हैं, बल और भगवान शक्तिशाली है, और क्रिया, क्यों क्रियाशील उनकी सारी शक्तियाँ हैं। और भगवत गीता में भी मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, सूयते का मतलब जन्म देती है, प्रकृति सबके कर्मों के अनुसार मेरे नजरदारी में मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो सबको जन्म देने वाली प्रकृति है। इस श्लोक में जिन साक्षियों का उल्लेख हुआ है अन्य वैदिक ग्रंथों में भी वर्णन है। तो प्रभुपाद जी अब ये भावार्थ पूरा करते हुए एक और वेदों का श्लोक उद्धृत करते हैं जिसमें ऐसे ही साक्षियों का नाम लिखा है, आदित्य इसका मतलब सूर्य, चंद्रवा चंद्रमा, अनिलो अग्नि, अमलश्च अनलश्च, और अनिलो अनल, एक जल और एक अग्नि, देयो भूमि, आपो हृदयम्, यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभेच संध्याए धर्मोऽपि जानति नरस्य वृत्तम्। नरस्य वृत्तम मतलब जीव के सारी वृत्तियों को, वृत्तियों का मतलब कैसे उनके मन में विचार आते हैं उसको जानते हैं। और ये कहाँ है देवता कोई पूछे तो, आकाश में तो है लेकिन हमारे शरीर में है, ये हमारे शरीर के हर एक अंग का एक अधिपति देवता है, वो हमारे इस शरीर में ही बैठे हैं भाई। मुख में अग्नि है, मुख में अग्नि है, ये दिशाएं कानों में दिशाएं हैं, हाथ में इंद्र देवता है। तो ये सारे देवता हमारे हर एक इंद्री का अधिपति है। ऐसा नहीं है कि देवता ऊपर से देखते हैं, ये हमारे शरीर में भी इन देवताओं का अस्तित्व है। हर इंद्री का एक अधिपति देवता है, सबको मालूम है ना, हर इंद्री का एक अधिपति देवता है। ये भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में हर इंद्री का कौन देवता है और वो कैसे भगवान के विश्व रूप में स्थित है, तो इसका वर्णन है। तो हर देव ये कहीं ऐसा नहीं है बाहर है, हमारे शरीर के अंदर बैठे हैं। कोई कहे कि सूर्य रात को नहीं होता है, नहीं, लेकिन सूर्य है हमारे अंदर, तो सूर्य आंख में का देव अधिपति है, बैठा हुआ है। तो हमारे शरीर के हर एक अंग का अधिपति ये सारे देवता हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अपना कर्म छुपा नहीं सकता। कहीं भी हम कुछ भी करें तो ये साक्षी हमारे साथ हैं। इससे हमको सीखना क्या चाहिए, सदा ही भगवत सेवा के कर्मों में लगना चाहिए, तो फिर कोई हमको कर्म भोगना नहीं पड़ता। और भोग के कर्मों में लगेंगे तो ये साक्षी हमको पकड़ के यमराज के पास दूसरा शरीर देने के लिए बाध्य कर देंगे। तो कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती है। हम दुनिया से छुपा सकते हैं, पुलिस से छुपा सकते हैं, सरकार से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से और भगवान के इन सारे साक्षियों से नहीं छुपा सकते। तो इससे हमको ईमानदार बनने की प्रेरणा मिलती है कि हमको सही मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि गलत मार्ग पे हम जाएंगे ऐसे नहीं है कि हम छूट जाएंगे। दुनिया में हो सकता है छूट जाएं, लेकिन भगवान के नेम से कोई नहीं छूटता है, उसका नेम बिल्कुल सूक्ष्म है। तो यहाँ भागवत को विराम देकर आज पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति कम, ये पंच तत्वों को कृष्ण का स्वरूप माना गया है। ये कृष्ण का स्वरूप माना गया है पांचों ही तत्वों को, जो पंच तत्व हमारे पास हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ये भक्त रूप है। भक्त रूप है का मतलब है भगवान लेकिन भक्त के रूप में आए हैं। भक्त स्वरूपम, ये नित्यानंद है जो भक्त के स्वरूप में आए हैं। भक्त के स्वरूप में आए का मतलब है कि वो बलराम जी नित्यानंद, उनका स्वरूप ही भगवान की सेवा करना है। स्वरूप का मतलब हमारी सेवा का जो भाव है उसके अधिपति भगवान है वो। भक्ता पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप सो भक्त अवतारम, और अवतार लिया है वो अद्वैत आचार्य हैं। इन तीनों को प्रभु कहते हैं, तीनों प्रभु। ये तो साक्षात भगवान विष्णु के विष्णु तत्व है, ये तीनों विष्णु तत्व हैं। और फिर है भक्ताख्यम, जिसको भक्त कहा जाता है वो श्रीवास, जो नारद जी का स्वरूप है गौर लीला में। और फिर भक्त शक्ति कम, भगवान की अंतरंग शक्ति वो है गदाधर पंडित, जो राधा रानी का स्वरूप है, अंतरंग शक्ति है। तो यहां कलम नहीं दो कल ने एक दिन पहले भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति उत्तम भक्ति के लक्षण बताते हुए बता रहे थे। उस श्लोक में शब्द आता है कृष्ण अनुशीलनम, तो वहां कृष्ण की परिभाषा क्या है, कृष्ण, कृष्ण के सारे अवतार, कृष्ण की शक्तियां, कृष्ण के भक्त। तो यहां पंच तत्वात्कम कृष्णम, ये भगवान श्री कृष्ण इन पंच तत्वों में, ये पांच तत्वों में भगवान श्री कृष्ण है। इसका मतलब भगवान के नारद जैसे भक्त वो वैसे भगवान के अवतार भी हैं, लेकिन वो भी उनकी सेवा करना भी कृष्ण की सेवा है। जैसे गुरु की सेवा साक्षात भगवान की सेवा के समान है, क्योंकि गुरु वो सेवा भगवान तक पहुंचाता है। तो श्रीवास को पंडित कहते हैं, और गदाधर पंडित, और श्रीवास पंडित, ये पंडित है। तो ये चार भाई हैं, श्रीवास, श्रीवास का मतलब क्या है, लक्ष्मी का स्थान, श्री मतलब लक्ष्मी, वास असल में इसका मतलब भगवान विष्णु, नाम विष्णु का है ये, जिसकी छाती के ऊपर श्री का निवास है, तो श्रीनिवास पंडित जी, पंडित जी का मतलब भगवान नहीं है लेकिन भगवान का भक्त है। श्रीपति, श्री निधि, श्री राम, ये चार भाई थे, और ये चारों भाई चेतना महाप्रभु के प्रकटे से पहले नवद्वीप में आके रहे और अद्वैत आचार्य की भागवत कक्षा में जाया करते थे, और जगन्नाथ मिश्रा से बहुत मित्रता थी श्रीवास पंडित जी की, और इनकी पत्नी मालिनी देवी सची देवी की बहुत निकट सहेली थी। और चेतना महाप्रभु के प्रकट्य के समय विशेष रूप से मालिनी देवी और श्रीवास पंडित उनको अपने पुत्र के समान ही समझते थे, और जो जब नटखट निमाई पंडित के रूप में बहुत बड़ा उधम मचाते थे, तो एक दिन श्रीवास ने कहा, निमाई पंडिताई का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, ऐसे डांटते हुए कहा। तो चेतना महाप्रभु हंसते हुए कहा, आप कृपा करेंगे तो एक दिन हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, ऐसे हंसते हुए चेतना महाप्रभु ने कहा। उसके तुरंत ही बाद चेतना महाप्रभु गया चले गए और वहां ईश्वरपुरी से दीक्षा की लीला का प्रसंग चला, और वापस आए तो उन्होंने अपने अवतार का उद्देश्य हरिनाम संकीर्तन शुरू किया। तो वो हरिनाम संकीर्तन विशेष रूप से श्रीवास के आंगन में होता था पहले, बाहर करने से पहले। तो इसलिए कहते हैं चेतना महाप्रभु चार जगहों में सदा रहते हैं, आज भी रहते हैं। और चार जगहें कौन सी हैं जहां चेतना महाप्रभु रहते हैं? श्रीवास आंगन, सची माता रंधन, जहां सची माता का रसोई घर है उसमें, नित्यानंद नर्तन, जहां नित्यानंद नर्तन करते हैं, और राघवेंद्र जालन, राघवेंद्र जहां पानी हट्टी है वहां राघवेंद्र जी का मंदिर है, ठाकुर जी का। उनकी बहन दमयंती 12 महीने के लिए महाप्रभु के लिए सारी सूखे सूखे सेवा के लिए सामान बना के छोटे छोटे थैलियों में बंद करके बड़े थैले में डाल के भेजती थी, तो वो महाप्रभु को बहुत प्रिय था, 12 महीने उनके बना हुए वस्तु का ही सेवन करते थे। तो ये चार स्थानों पे महाप्रभु रहते, श्रीवास आंगन में। तो श्रीवास कब महाप्रभु ने ये लीला शुरू की? श्रीवास आंगन में 1 साल तक कीर्तन की, जब नित्यानंद वापस आके मिले, नित्यानंद के आने के बाद। और नित्यानंद श्रीवास के घर पे रहते थे, और मालिनी माता, और ये तो अवधूत थे, वो तो कभी मालिनी माता को माँ की तरह गोद में बैठते थे कि मेरे को दूध पिला दे, तो वो उनकी इन सब हरकतों को भी अवधूत समझ के वो बेटा ही मानती थी। और एक दिन ऐसे रात को महान संकीर्तन हो रहा था, श्रीवास के घर में अंदर से रोदन का आवाज आया। श्रीवास पंडित अंदर जाके देखते हैं तो स्त्रियां रो रही हैं, श्रीवास के पुत्र का देहांत हो गया। श्रीवास एकदम भगवत तत्व को जानने वाले कहने लगे, जीव का आना जाना कर्मों से होता है, लेकिन सौभाग्य है कि आज साक्षात भगवान हमारे आंगन में नृत्य कर रहे हैं। इस वक्त अगर बच्चे ने कीर्तन सुनते हुए प्राण त्यागे हैं तो भगवत धाम क्या होगा, इसलिए रोदन बंद करो, और तुमको रोना भी है तो बाद में रो लेना, इस वक्त तुम्हारे रोने से चेतना महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य के आनंद में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। और अंत में उनको चेतावनी दी कि अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं अभी कूद के गंगा जी में प्राण दे दूंगा। वो गंगा जी के तट पे रहते थे, 3 बार गंगा में रोज स्नान करने का उनका नेम था, सुबह, मध्याह्न और शाम को संध्या से पहले। ये वापस कीर्तन में आए, महाप्रभु ने कीर्तन समाप्त किया तो कहा, आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा था, क्या बात है श्रीवास? श्रीवास ने कहा, कैसे, कोई जहां आप होंगे वहां मंगल ही मंगल होगा, अमंगल कैसे हो सकता है? लेकिन दूसरे सब लोगों ने कहा कि नहीं, श्रीवास के घर में अंदर पुत्र का देहांत हो गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कैसे आपके पुत्र का देहांत हो गया और आपने मुझे बताया नहीं? श्रीवास कहता है, मैं अगर आपको बताता तो आपके कीर्तन और नृत्य के आनंद में विघ्न पड़ता। उसके लिए वो तो मेरी मृत्यु के, हम सारे घर वाले मर जाएं और मेरी मृत्यु से भी ज्यादा मुझे कष्ट का देने वाला होता अगर आपके आनंद में और नृत्य में और कीर्तन में भंग पड़ता, इसलिए नहीं बताया। महाप्रभु कहते हैं, मैं आपका संग कैसे छोड़ सकता हूं? जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं उसका संग मैं कैसे छोड़ सकता हूं? दो बार महाप्रभु ने ये शब्द कहा, इससे लोग सब चिंतित हो गए। इसका मतलब महाप्रभु अब संन्यास लेने वाले हैं और संग छोड़ने वाले। मैं कैसे आपका संग छोड़ सकता हूं? ऐसे कह के महाप्रभु आंखों से आंसू बहाते हुए अंदर चले गए और बच्चे को कहां गए, और मृत बच्चा उठ के बैठ गया। बोला, मैं कहां जा सकता हूं? आपकी आज्ञा से कोई आता है और जाता है, कई बार मैं आया गया कर्मों के कारण, लेकिन इस बार आपके कीर्तन की ध्वनि सुनते हुए मैं आपके धाम ही जा रहा हूं। और ये कह के बच्चा शांत हो गया तो सारे घर में शांति हो गई, आनंद हो गया। और महाप्रभु ने उस वक्त उठ के एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, श्रीवास तेरा एक पुत्र गया है, लेकिन मैं और नित्यानंद तेरे दो पुत्र अब हैं। हम दोनों आपके पुत्र हैं, उम्र में उसी पुत्र के समान थे। तो महाप्रभु ने ये आश्वासन श्रीवास पंडित को दिया के। और जब महाप्रभु संन्यास लेके चले गए तो श्रीवास पंडित वहां से नवदीप छोड़ के वो कहाँ गए, कुमारहट गए, कुमारहट से आए थे, कुमारहट गए। उसका नाम आजकल हरि क्या है, हरी कुछ गंगा के दूसरे तट पे नाम है, यहाँ अभी भी श्रीवास के ठाकुर जी पूजित हैं। वो जब चले गए वहां से तो चैतन्य महाप्रभु से हर वर्ष मिलने जाते थे जगन्नाथपुरी में। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से पुनः अपनी माता सची से मिलने आए थे तो अद्वैत आचार्य से मिलने के बाद श्रीवास पंडित से मिलने गए थे। और जब श्रीवास पंडित से मिलने गए थे तब उन्होंने एक अद्भुत आशीर्वाद दिया था। इस आशीर्वाद के साथ आज की कक्षा को पूरा करेंगे, क्योंकि ये आशीर्वाद भक्तों के लिए बड़ा आश्वासन है। श्रीवास से चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे कि तुम गृहस्थी हो। वैसे श्रीवास जी के घर में एक दिन चैतन्य महाप्रभु चले गए और जाके बोला, तुम जिसकी पूजा करते हो, जिसका तुम ध्यान करते हो, देखते नहीं हो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और ऐसे कहते ही जहां उनका विष्णु का सिंहासन था, भगवान का पूजा का, उसके ऊपर महाप्रभु बैठ गए और चतुर्भुज रूप दिखा दिया, शंख चक्र गदा पद्म लेके। और श्रीवास अद्भुत आश्रय में प्रणाम करने लेट गए। और उस वक्त छोटी सी भतीजी श्रीवास की वहां खड़ी थी, नारायणी, 4 वर्ष की। महाप्रभु ने कहा, हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। वो ऐसा पागलों की तरह कृष्ण कह के आंसू से, इतने आंखों से आंसू बहे के नीचे चरणों तक चले गए। वो नारायणी के ऊपर भगवान महाप्रभु चेतना की कृपा है कि आगे बन के वो वृंदावन दास की माता बनी, जो चेतना चरित्र का व्यास है। और चैतन्य महाप्रभु के स्नान के लिए पानी लाती थी गंगा का एक दुखी सेवका। एक ने महाप्रभु ने पूछा, कौन पानी लाता है? बोला, है दुखी। बोला, नहीं इसको इधर बुलाओ, इसको सुखी बोलो, दुखी नहीं बोलना। इससे महाप्रभु ने संदेश दिया कि जो भगवान की सेवा करता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा सुखी रहता है। तो आज जब महाप्रभु संन्यास के बाद पुनः श्रीवास से मिलने आए तो पूछा, तुम गृहस्थी हो, तुम काम धंधा करते नहीं हो, घर गृहस्थी कैसे चलेगा? बोला, भगवान देता है। बोला, नहीं दिया तो? बोला, उपवास कर लूंगा। बोला, दूसरे दिन नहीं मिला तो? बोला, उपवास कर लूंगा, गंगा जल पी लूंगा। बोला, तीसरे दिन? बोला, उपवास कर लूंगा, गंगा जल पी लूंगा, नहीं तो गंगा जी में ही प्रवेश करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठे हरि नाम जपते रहो, कभी ऐसे संभव है कि लक्ष्मी भिखारी बन के किसी से मांगने चली जाए, लेकिन तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी कहीं मांगने जाए ये संभव नहीं है, लेकिन वो भी हो जाए तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। ये महाप्रभु का आश्वासन भक्तों के लिए आशीर्वाद ऐसा है, भक्त अगर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो कभी उनके जीवन में अभाव नहीं आएगा, कभी अभाव नहीं आएगा, कभी कमी नहीं आएगी, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के माध्यम से भविष्य में आने वाले भक्तों को भी आशीर्वाद दिया है, और जो ऐसे महाप्रभु की सेवा में लगे हैं आज तक किसी को कभी अभाव हुआ है, कोई भूखा सोया हुआ है, ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं, ये महाप्रभु की कृपा से संभव है और ये देखा जा सकता है। आज भी श्रील प्रभुपाद जी उसका उदाहरण है, कुछ भी नहीं ले गए थे लेकिन गौरवाणी का प्रचार करने के लिए गए तो पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक आंदोलन को स्थापित कर, और इतनी लक्ष्मी आई कि प्रभुपाद जी कहते हैं इतना भगवान दे रहा है कि मैं जरूरत से ज्यादा ही हमेशा आती रहती है, कभी कमी नहीं होती। लेकिन क्यों भगवान देते हैं, प्रभुपाद ने एक बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मैं एक कोड़ी भी एक पैसा भी अपने भोग के लिए नहीं उपयोग करता हूं, इसलिए भगवान बेअंत दे रहा है। तो जो गौरवाणी प्रचार करता है, महाप्रभु की सेवा में लगा हुआ है, तो अपने घर में बैठा हो तो कभी कमी नहीं आएगी, ये विश्वास करना चाहिए। तो भक्ति में दृढ़ होने के लिए कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इन श्रीवास को दिए हुए आश्वासन को याद रखना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? दो प्रश्न। हाँ प्रभु जी, क्या शुभ नाम है आपका? राम राजेदास। राम राजे जी बोलिए। ज्ञान सतोगुण में होता है, और सतोगुण जब तक रहेगा तो स्वर्ग तक जाना ही पड़ेगा ना। ज्ञान है ही सतोगुण में, जब तक त्रिगुण अतीत नहीं होंगे तब तक बच नहीं सकते हैं। भक्ति तीनों गुणों से परे है, ज्ञान तो सतोगुण में ही है, इसलिए वो हमारे को जड़ से पाप को नष्ट नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्रीवास पंडित की जय। गौर प्रेमानंदे।